ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் தசஸ்லோகி பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ விஷ்ணு வல்லபானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
நச விஷய விரக்திஹ த்யான யோகேன சக்திஹ இதி மனசி சதாஹம் சிந்தயன் ஆத்ய சக்தே ருசிர வசன புஷ்பைஹ அர்ச்சனம் சஞ்சினோமி வம்சீ விபூஷித கரா நவ நீரதாபாத் பீதாம்பராந்தருணபிம்பலாதரோஷ்டாத் பூரணேந்துசுந்தரமுகாதரவிந்தநேத்ராத் க்ருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே. ஓம் பத்ரம் நோ அபி வாதய மனஹ. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்ரீ சங்கர் பகவத் பாத விரசிதா தசஸ்லோகி. ந பூமிர் ந தோயம் ந தேஜோ ந வாயுர் ந கம் நேந்திரியம் வா ந தேஷாம் சமூஹ அனைகாந்திகத்வாத் சுஷுப்தே கசிதஸ் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஹகே. ந வர்ணா ந வர்ணாஸ்ரமாசார தர்மா ந மே தாரணா த்யான யோகா தயோபி அநாத்மாஸ்ரயாஹம் மமாத்யாசஹானாத் ததேகோ வசிஷ்டஹ சிவஹ. ந மாதா பிதா வா ந தேவா ந லோகா ந வேதா ந யஜ்ஞா ந தீர்த்தம் ப்ருவ சுசுப்தோ நிரஸ்தாதி சூன்யாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்டஹ சிவஹ கேவலோ. ந சாங்க்யம் ந சைவம் ந ததுபாஞ்சராத்ரம் ந ஜைனம் ந மீமாம்சகாதேர்மத் விசிஷ்டானுபூத்யா விசுத்தாத்மகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஹ கே. ந சூர்த்வம் ந சாதோ ந சாந்தர்ண பாஹ்யம் ந மத்யம் ந திரியம் ந பூர்வாபராதி வியத் வ்யாபகத்வாத் அகண்டைக ரூபஸ் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஹ கேவலோஹம். ந சுக்லம் ந க்ருஷ்ணம் ந ரக்தம் ந பீனம் ந குப்ஜம் ந பீதம் ந ஹ்ரஸ்வம் ந தீர்கம் அரூபம் ததா ஜ்யோதிராகாரகத்வாத் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஹ கே. ந சாஸ்தா ந சாஸ்த்ரம் ந சிஷ்யோ ந சிக்ஷா ந சத்வம் ந சாஹம் ந சாயம் ப்ரபஞ்ச ஸ்வரூபாவபோதோ விகல்பாசயிஷ்ணுஸ் ததேகோ வசிஷ்ட சிவஹ. ந ஜாக்ரன் ந மே ஸ்வப்ன கோ வா சுஷுப்திர் ந விஸ்வோ ந வா தைஜஸ ப்ராக் अविद्यात्मकत्वात्त्रयाणां तुरीयस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम् अपि व्यापकत्वाधितत्वप्रयोग स्वतः सिद्धभावात् अनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेको वशिष्ठः शिवः न चैकं तदन्यद्वितीयं कुतः स्यात् न वा केवलत्वं न चाकेवल न शून्यं न चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धम् कथं सर्ववेदान्तसिद्धम् ब्रवीमि न भूमिर्न तोयम् न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियम् वा न तेषाम् समूहः। सबका निषेध करके और फिर कह दिया जो सुषुप्ति अवस्था में एकमात्र अपना जो स्वरूप सिद्ध होता है वह अनैकांतिक होने के कारण अव्यभिचारी होने के कारण अविनाशी होने के कारण अहम् एकः केवलः अवशिष्टः शिवः एकमात्र में शिवस्वरूप ही हूं। जब हमें अपने शिवरूपता का भान नहीं होता उस समय हमारी भाषा कैसी होती है, तो कहा न जानामि, मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानते कि मैं कौन हूं, और यदि जानते भी हैं हम लोग जिस चीज को लेकर बोलते कि मैं जानता हूं, वह फिर व्यभिचारी है या अव्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है बदलने वाला, और अव्यभिचारी का मतलब कभी न बदलने वाला। जब हम लोग शरीर को लेकर बोलते हैं कि मैं आ गया, यहां मैं आ गया, मैं कौन है, किसको लेकर आप बोल रहे आ गया, शरीर को लेकर बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूं, ये भी किसको लेके बोल रहे हैं, शरीर को। तो शरीर मैं हूं या मेरा शरीर है, क्या बोलेंगे? तो जो पहले मैं हो और वही फिर मेरा हो जाए तो ये व्यभिचारी हुआ कि अव्यभिचारी हुआ, बदल गया ना। इसीलिए कहना पड़ेगा जो मैं कभी मेरा भी हो जाए वह अपना स्वरूप नहीं हो सकता। जो मैं कभी ना बदले, हमेशा मैं ही बना रहे, वही हमारा स्वरूप है। पांच भूतों से युक्त हो करके जब यह पांच भौतिक शरीर को लेकर हम उपाधि में रहते हैं, वास्तव में देखा जाए उपाधि को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने इतना बड़ा प्रपंच क्यों रचा? उपाधि माना उनको अच्छा लगा होगा ना? उपाधि के द्वारा मानव परमात्मा अपना नियंत्रण करवाता है। उपाधि तो भला क्या परमात्मा का नियंत्रण करेगी, लेकिन उन्हें अपनी ही उपाधि से नियंत्रित होने में आनंद आता है। वह कैसे? जैसे कोई सेठ जी हो, लालाजी के पास कोई ऐसा व्यक्ति चला जाए उधार लेने जिसके ऊपर लालाजी को विश्वास न हो, तो ये तो कहेंगे नहीं कि हम तुम्हें नहीं देंगे, कुछ न कुछ बहाना करना पड़ेगा ना। क्या बहाना करेंगे? मुनीम जी के पास चले जाओ। जब मुनीम के पास जाएगा उधार लेने वाला, तो मुनीम समझ जाता है कि सेठ ने मेरे पास भेजा है, इसका मतलब वो देना नहीं चाहते, नहीं तो मैं भला कौन होता। पैसा तो सेठ का है, देना होता तो सेठ जी स्वयं दे देते, इन्हें तो हमको बुला के बोल देते, ये आए इनको दे देना, मेरे पास भेज करके मुझे जो मालिक बनाया है, मैं वास्तविक मालिक तो हूं नहीं, मालिक तो वही है। अब सेठ जी अपने अच्छाई दिखाने के लिए, मुनीम जब गए बोले आपने उनको भेजा क्या देना है, बोले देख लो, बोले 200 रुपया दे देते हैं। तो सेठ जी बोलते नहीं नहीं थोड़ा बढ़ा दो, 1000 रुपया दे दो। मुनीम बोलते अपने गोलक से 200 देने की क्षमता है हमारी, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, क्योंकि मुनीम को पता लग चुका है कि इस आदमी को सेठ देना नहीं चाहता है। सेठ ने सामने कह भी दिया 1000 दे दो, फिर भी मुनीम ने कहा 200 से ज्यादा हम नहीं देंगे, बोल के चला गया। और जिस आदमी ने उधार मांगा था उसके सामने सेठ जी क्या बोलते हैं, क्या कहूं जी, मुनीम जी बहुत पुराने हमारे पिताजी के समय से है, इसलिए मेरी भी नहीं चलती है, हाँ मैं भी चुप हो जाता हूं, क्या करूं। अब उधार लेने वाला घर में जाके बोलता है सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो तो बेचारे देना चाह रहे थे, उनका जो मुनीम है ना वो खड़ूस है। तो उस मुनीम के द्वारा सेठ जी ने अपने ऊपर जो नियंत्रण करवाया किसके लिए, आनंद लेने के लिए कि दुख प्राप्त करने के लिए, आनंद लेने के लिए। न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, सबका पहले निषेध, पहले तो स्वीकार किया और बाद में फिर सबका निषेध भी कर रहे हैं कि ये भी मैं नहीं हूं, वो भी मैं नहीं हूं। इस उपाधि के माध्यम से परमात्मा ने इसमें कैसे प्रवेश किया, प्रवेश जैसा हुआ, ये सब प्रसंग आने पर विचार करेंगे। कल जो होमवर्क के रूप में दिया, जैसे कल कह रहे थे कि बंबई में सांप ही नहीं है, अब सांप हो कहां, सांप के रूप में तो हम ही लोग हैं, और कौन है, असली सांप चला गया तो मान लो वो कहीं ना कहीं तो होगा, पैदा तो होगा ही। आचार्य शंकर ने एक जगह भगवती की स्तुति करते हुए कहा है, तव स्वाधिष्ठाने हुतवहम अधिष्ठाय निरतम, तव स्वाधिष्ठाने हुतवहम अधिष्ठाय निरतम। अधिष्ठान स्वाधिष्ठान की जो बात होती है ना, स्वयं के अधिष्ठान, अधिष्ठान शब्द कैसे बनता है, स्थान शब्द है स्थान, और स्थान में अधि को जोड़ देंगे तो बनता है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है अधिकृत्य स्थीयते, अधिकार पूर्वक जहां रहा जाए उसको कहते हैं अधिष्ठान। अब हम लोग जहां रह रहे हैं इस समय में, कहां पर हैं, शरीर में, शरीर क्या हमारा अधिष्ठान हो सकता है, कितने दिन रहे, लंबे समय तक रहे या थोड़े दिन तक रहे, यह भी यहां महत्वपूर्ण नहीं है। रहना दो तरह का होता है, एक तो अधिकार रहित होकर रहना और एक अधिकार सहित साधिकार। किसी के घर में आप गए मेहमान बन के 2-4 दिन के लिए, और जिसके घर में आप रुके तो वो कहीं और आपको ले गए मिलाने के लिए, तो जब आपसे पूछेगा कि आप कहां हो तो किसका घर बताओगे, जिसके घर में रुके उसी के घर का नाम लेना पड़ेगा, इनके पास रुका हूं, भले ही वो अपने परम मित्र हैं, उन्हीं के घर में हमें रुकना है 2-4 दिन, लेकिन तब तक के लिए परिचय तो उसी का देना पड़ेगा। सर रहना तो दिख रहा है रह रहे हैं, लेकिन वो अधिकार पूर्वक रहना नहीं है। अधिकार पूर्वक जहां रहा जाए वह होता है अपना घर। इससे भी मोटा उदाहरण, जब जब बंबई में कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आमची मुंबई, उस समय हर आदमी को अपने ठिकाने की याद आती है। विदेश में रहने वाले लोग आजीवन वहीं रहते, जब भी उनको इंडिया की बात आ जाए, वो बहुत भारत बहुत गंदा देश है, वहां तो बहुत कष्ट होता है, यहीं पैदा हुए यहीं रहे, लेकिन अब उसने अधिष्ठान को ही स्वीकारना मना कर दिया। किसको अधिष्ठान मान लिया? जो अपना अधिष्ठान नहीं है। और जब वहां अचानक ये कानून लागू हो जाए कि जो जो अपने देश से आए थे वहां वापिस जाए, उस समय पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है, अब कहां जाए। तवस्वाधिष्ठाने हुतबहम अधिष्ठाय निरतम। अधिकार पूर्वक जहां रहे चाहे थोड़े दिन भी रहो, वो अपना अधिष्ठान है। लंबे समय से रहे, एक शरीर को छोड़ा, पांच भूत से छूटा, दूसरी उपाधि को फिर ग्रहण किया, ये तो बस केवल रहना हो रहा है, अपने अधिष्ठान में अभी हम पहुंचे नहीं है। और पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से लौट के आना नहीं पड़ता। अधिष्ठान का दृष्टांत तो बहुत आप सुनते हो, तो स्थान से ही अधिष्ठान बनता है। और जो आधार के रूप में दिखाई दे रहा है, आधार के रूप में ले लेना चाहिए जीव को। जीव कौन है? सत और चित की उपलब्धि जिसमें हो वही आधार है, वही जीव है। लेकिन अभी यह जीव अपने अधिष्ठान रूपी परमात्मा से अपने को अलग मानता है, और यही हम लोगों के सुख दुख आदि के कारण बन जाते हैं। जैसे घर से यात्रा करने के लिए निकले, बड़े उत्साह पूर्वक जाते हैं, लेकिन घूमते हुए हर रोज दिन गिनते हैं, आज कितने दिन हो गए, किसकी याद आती है? घर की याद आती है। अपना ठिकाना अपना होता है, यदि घर बना करके भी आनंद नहीं आता तो कोई भी घर बनाते ही नहीं। और यात्रा करने जाते तो लौट के भी नहीं आते, बोले अब निकल गया, एक बार तो निकल गया। कहीं पर भी रहते घुमा फिरा करके हमें अपने घर की ही याद आती है। तवस्वाधिष्ठाने हुतवहम अधिष्ठाय निरतम। सांप का अधिष्ठान हम लोग रस्सी को मानते हैं। आचार्य शंकर के दादा गुरु हो गए गौड़पादाचार्य जी, इसलिए मांडू की कारिका आदि पढ़ने से पहले इन सबको पढ़ लेना जरूरी है। वह केवल प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता को लेकर विचार करते हैं। आचार्य शंकर ने व्यावहारिक सत्ता भी मानी, व्यवस्था दी ताकि लोगों को सामंजस्य करने में दिक्कत ना आवे। अजातवाद की जब बात करते तो क्या बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। कैसे नहीं हुआ? जैसे रस्सी में सांप तीनों काल में नहीं। लेकिन जब हम लोग विचार करते हैं तो रज्जो यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का अही मतलब सांप, अहे मतलब सांप का भ्रम हो जाता है। शायद तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिखा है रामचरितमानस में, रज्जो यथा हेर भ्रमा, रस्सी में जैसे अही सांप का भ्रम होता है। लेकिन वह सांप रस्सी के आधार पर ही, जितनी मोटी रस्सी उतना ही मोटा सांप दिखेगा, जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही लंबा दिखेगा, टेढ़ी रस्सी होगी तो टेढ़ा सांप दिखेगा, सीधी रस्सी होगी तो सीधा सांप दिखेगा। लेकिन विचार जब करते हैं तो सांप नाम की चीज तो वहां है ही नहीं, फिर ये हो कैसे गया? पंचरसी आप लोग अभी श्रवण कर रहे हैं स्वाध्याय में, उसमें आता है एक जगह, जिस माया को लेकर के परमात्मा इतने बड़े जगत की प्रतीति करा रहा है, ये है कैसा? जिनको अभी संसार में आग्रह है, जिनकी बुद्धि में आग्रह है, ऐसे लोग संसार को वास्तविक मानते हैं। जब विचार करने लगे, विचार करते तो क्या बोलते हैं, यह संसार सत्य है या असत्य है, क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय तो बाद में कहेंगे ना। अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसका निर्वचन न किया जा सके। निर्वचन का मतलब होता है प्रतिपादन करना। प्रतिपादन जिसका हम नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। निर्वक्तुम योग्यम निर्वचनीयम और निर्वक्तुम अयोग्यम अनिर्वचनीयम, जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं। जगत को जब हम देखते हैं प्रतीति हो रही है तो इसको असत्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब ज्ञान होता है, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, कोई भी चीज यहां टिकने वाली है क्या, रहने वाली है क्या? आदो अन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। मिथ्या का लक्षण आप लोग खूब सुने हुए हो। आनंदवन के महाराज जी थे ना, उनका आश्रम गिर गया, कई लोगों को यहां मालूम होगा। हां, आनंदवन आश्रम गिर गया कांदिवली में। गिरा तो वहां देखो सबकी कैसी बुद्धि अलग अलग। एक महात्मा जी अपना अनुभव सुना रहे थे, उनको कथा करने आना होगा ना वहां, तो बोले जब गया तो सोचा महाराज जी कहीं उदास बैठे होंगे, तो कुछ नमकीन नमकीन भी ले लिया सब और गए महाराज जी के पास। बोले आओ भाई, सब ठीक ठाक है तुम्हारे वहां? तो महात्मा थोड़े बोलने के उनका जो ढंग था, बोले देखो स्वयं परेशान है फिर भी हमको पूछ रहा है कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। जिसमें परेशानी है ही नहीं फिर भी हमें उसमें परेशानी दिख रही है, यही तो भ्रम है ना। तो जब उनका आश्रम गिरा तो उस समय जो लोग थे वहां बता रहे थे कि आप लोगों ने वेदांत पढ़ा है। क्या पढ़ा? आदो अन्ते च यन्नास्ति। ये आश्रम बनने से पहले यह आश्रम था? नहीं था। अब है? नहीं है। तो बीच में जो था उसको सच्चा कहोगे कि झूठा कहोगे? जैसे हम लोग जन्म से पहले यहां थे? नहीं। जाएंगे तो यहां रहेंगे? नहीं। तो अभी भी यहां होते हुए क्या है हम लोग? थोड़ी देर के लिए मान लो, घबराना मत, हो जरूर। नहीं होते तो वही वाली बात है, नत्येवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। नहीं होंगे फिर, यदि हम पहले नहीं होते तो अभी भी नहीं होते, और यदि अभी हैं तो इसका मतलब पहले हम कहीं थे, और जब हम यहां नहीं रहेंगे तब भी हम कहीं न कहीं तो होंगे। बस इससे थोड़े संतुष्टि मिल जाती है। अभी आप लोगों ने ये ब्रह्माष्टमी माला के श्लोक नहीं पढ़ा, जागृत में भी है, सुषुप्ति में भी है, और मरण काल में निर्वाण पद है। ब्रह्म तो हमेशा ही है, उसका तो अभाव हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस शरीर को लेकर के हम लोग थोड़ी देर के लिए भाव बुद्धि बनाते हैं उसके लिए कहा जा रहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव निधनान्येव तत्र का परिवेदना की परिदेवना। परिदेवना, परिदेवन का मतलब क्या है? खेद। क्यों इस बात के लिए खेद करें? अव्यक्तादीनि भूतानि, जितने भी ये पंच महाभूत की उत्पत्ति हम लोग मानते हैं, सृष्टि होने से पहले ये सब के सब अव्यक्त थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब व्यक्त हो गया पांच भूत उपाधि को ग्रहण करके, यह आत्मदेव उसी उपाधि से नियंत्रित होकर आनंद लेने के लिए आए, जैसे सेठ जी मुनीम को आगे करके आनंद ले रहे हैं, फिर भी हम लोग परेशान हो गए। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये भूत पहले अव्यक्त थे, अब बीच में क्या हो गया? व्यक्त मध्यानि। हे भारत, अर्जुन को वहां कई जगह तो कौन्तेय, कहीं पर पार्थ, वहां पर भारत कह करके ही बता रहे कि तुम तो ज्ञान में निरत रहने वाले हो। ज्ञानी लोग ऐसे ही विचार किया करते हैं, क्योंकि भादीप्तो, भा का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, ज्ञान। कभी भा में उपसर्ग जोड़ते चले जाओ, प्रभा, विभा, आभा, ये सब बनता है। तो भारत कह करके ही बता दिया कि तुम जो है ज्ञान में स्थित रहने वाले हो। ज्ञान में जो रत रहे, लगातार अपनी वृत्ति को बनाए रखे, वास्तव में उसी का नाम है भारत। भागवत में जो भा आता है ना, उसका यही अर्थ किया हुआ है, भा दीप्तो चिदानंदे गतिर यस्य अलौकिकी। भागवत शब्द का अर्थ ये आप लोग लिख लो, दस श्लोकी सुन रहे हो ना, इससे बहुत सारी बातें आ जाती बीच में। भा दीप्तो चिदानंदे गतिर यस्य अलौकिकी, भा का अर्थ होता है चिदानंद, सच्चिदानंद, भादीप्तो चिदानंदे, और ग का अर्थ किया गतिर्यस्य अलौकिकी। भागवत की गति कैसी है? अलौकिक गति है। लोक के अनुसार जो चले उसको लौकिक बोलते हैं, लोक से हट करके जो उसको अलौकिक कहते हैं। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, व का अर्थ किया कि संपूर्ण शास्त्रों में भागवत शास्त्र सबसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है। और तरी इव भवारणवे, भव संसार रूपी जो अर्णव है, समुद्र है, उसके लिए तरी है। तरी का मतलब है जहाज, नौका के समान है। तरी इव भवारणवे, ये भागवत का अर्थ जैसे किया तो भार से हम उधर चले गए। व्यक्त मध्यानि भारत कह करके भगवान सावधान कर रहे हैं अर्जुन को संबोधित करके कि तुम तो ज्ञान में रत रहने वाले हो, इसे हमेशा ये चिंतन किया करो कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले अव्यक्त था, बीच में थोड़ी देर के लिए व्यक्त हुआ, और अव्यक्त निधनानि, जब निधन होगा तो पुनः अव्यक्त हो जाएगा, इसलिए तत्र का परिदेवना, उसमें खेद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आदो अन्ते च यन नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। तो महाराज जी ने कहा कि जो आश्रम पहले नहीं था, बीच में दिखा फिर चला गया, इसी को बोलते हैं मिथ्या। जो पहले ना हो, बाद में भी ना रहे, तो बीच में होते हुए भी उसको नहीं ही मानना चाहिए। और इतनी बात समझ में आ जाए ना तो आनंद ही आनंद है। मिथ्यात्व का निश्चय करना ही तो बहुत बड़ी बात है, मिथ्या जानना एक अलग चीज है, मिथ्यात्व का निश्चय करना, इसके लिए जो अनैकांतिकत्वात् सुषुप्तेक सिद्ध जो कहा है मांडुक उपनिषद में, ये प्रश्न आता है आप लोगों को कुछ हो याद तो बताना कि जहां पर सुषुप्ति अवस्था में जाने वाला जो जीव है, जो प्राज्ञ कहलाता है, प्राज्ञ का मतलब हो गया प्रकर्षेण अज्ञ प्राज्ञ, क्या उसकी अज्ञता है? न अहम किंचित अवेदिशम, और कह रहा है सुखम अहम अस्वाप्सम। किसी ने बोला कि जब सुख का अनुभव वहां हुआ तो जागृत में तो केवल स्मरण कर रहा है, तो वहां तो उसको अज्ञान ही मानना पड़ेगा ना। जैसे आप जब सोते हो तो कभी आपने देखा है कि ये देखो मैं जागृत से स्वप्न में जा रहा हूं, कभी कोशिश करके देखना, गहरी नींद में जा रहा हूं, देखो अब मैं सो गया हूं। यदि ये बोलोगे तो आपको जागा हुआ माना जाएगा, आप सोए हुए नहीं माने जाएंगे। और ऐसे मृत्यु काल में भी मैं जा रहा हूं शरीर को छोड़ के, यहां तक तो सबकी बात सुनते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे दादाजी ने ऐसा कहा, भाई हम अब जाने वाले हैं, आज भोजन नहीं करेंगे, आसन लगा दो, मैं ही जप करूंगा, पाठ करूंगा, लेकिन प्राण छूटने से पहले थोड़ी देर के लिए मूर्छना आती, मूर्छित होते, एक बार तो मूर्छित होकर के तभी प्राण निकलता है। गहरी नींद में हम लोग रोज जाते हैं, लेकिन कभी भी हमने अपने को जाते हुए नहीं देखा।